उसके बाद महाराज ने किया जानन पड़ा। अब देखिए बाहरी कोई त्याग नहीं किया, शरीर को उन्होंने स्वाधीन नहीं किया, अपने को स्वाधीन किया। शरीर के द्वारा कोई ऐसा असामाजिक काम नहीं कर रही है, लेकिन अपने द्वारा उनसे अच्छा खाना नहीं खाया जाता, अच्छा कपड़ा नहीं पहना जाता। क्यों? उनकी जन्म समझाती है कि भाभी जी आप दक्षिण चीन को नहीं पहनती, आप आलूजन को नहीं पहनती, आप खट्टी छाट क्यों पीती हैं, आप बासी रोटी क्यों खाती हैं, आप ताजा भोजन क्यों नहीं करती। संसार क्या कहेगा कि महाराणा उदयपुर की रानी है, वो ऐसे रहती है, वो झक मारे संसार। वो प्रसंग हमने सुना एक बात, उदय भाई जी नंद सिंह की नंद कहती है, एक बात वजह कहती है, उन्होंने संसार झक मारे भाई जी मैं खा नहीं सकती, मैं पहन नहीं सकती। क्यों? मेरा प्रियतम, मेरा प्राणनाथ, मेरा पति मुझसे बोलता नहीं है, मेरे साथ खेलता नहीं है। एक पति को जो पत्नी के साथ करना चाहिए तो करता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये जो अच्छा नहीं लगता तो उनका मन लगता है क्या? बोलो अम्बिका जी का मन हट गया कि नहीं हट गया? कहां लग गया? जो अच्छा लगता है मन तो लगा हुआ है, क्योंकि मन में कोई चीज और पसंद ही नहीं आती। इस तरह से मीरा जी की दिनचर्या बीत रही है और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना उनके सामने आ रहा है, जैसे सत्युमा प्रसाद जी के सामने आया था, अब आज के युग में मीरा जी के सामने आता है। ये लोग कुछ परवाह नहीं करते। रानी रुकेगा, राणा रुकेगा तो अपने देश से निकाल देगा, मार डालेगा, हर रुकेगा तो मैं कहां जाऊंगी। इसलिए राणा वाना की परवाह कुछ नहीं करते, बिल्कुल निशंक है, निर्भय है, निश्चिंत है, और घर छोड़ के बाहर तो जाती नहीं। उसी दशा में उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। सुना जाता है जब महाराणा का शरीर नहीं रहा तो उनके जो देवर थे वो गद्दी में बैठ गए और उनको सब संतों के पास मिलना अच्छा लगता है और वो सुनते हैं कि कमरे में आवाज आती है कि कोई बात कर रहा है, मीरा जी किसी से बात कर रहे हैं, किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, किसी तो सब खेल रही है। ऐसा जैसे जैसे राजा महाराजाओं का व्यवहार होता है उस तरह का सुनाई दिया है। क्रोध आता है उसको, एक दिन तलवार लेके आ गया, खोलो अभी खोलो, देखे कौन है, किसके साथ तुम बात करती हो, तो तुमको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा। तो मीरा जी खोल देती है तो उसे तो कोई नहीं दिखता, तलवार चलती ही नहीं, हाथ उठता ही नहीं, अब क्या करे? जाकू राके साइया मार नहीं सके कोई, उनका पति समर्थ है, उनके पास है। तो ये भी अजगर सामने आया तब भी मेरा भी कोई भय नहीं हुआ, राणा कुछ नहीं कर सका। फिर राणा सोचा कि ऐसे तो नहीं काबू में आए, मारी आएगी, एक तरीका है, लाओ चरणामृत के बहाने जेल भेज दो। तो बांदी के द्वारा जहर का प्याला भेजा, बांदी के कारण देखते हैं चर्चा के तो मार डालेंगे। अब बांदी लेते तो गई राज आज्ञा को लेकर, लेकिन कांप रही है, थर थर घबरा रही है। अब उसने कहा मैं मर भले ही जाऊं, महाराणी साहब महाराणी साहब ये चरणामृत नहीं है, ये जहर है, तुम मत पियो, तुम मत पियो। मैं क्या तू बात करती है, चरणामृत मेरे पास आया है। अब वो पी गई और जहर चरणामृत हो गया, उनकी रक्षा हो गई। क्यों हो गई? कि इनको तो भगवत विश्वास इतना जोरदार था, इतना स्ट्रांग था, इतना सबल था कि वो समझती है चरणा मृत है। कहने पर दी गई तो बिनी मिली। ऐसी अनेक घटनाएं उनके सामने आती और वो सब उनकी रक्षा होती जा रही है। अब आप कहोगे हम तो मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते तो कोई उपाय ही नहीं है, तो परमात्मा ही को नहीं मानते और घटना कैसे मान लोगे? तो परमात्मा की महिमा ही नहीं मानते और घटना कैसे मान लोगे? आजकल भी घटनाएं होती है, ऐसी बात नहीं कि भैया जी के सामने हुई है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, जब एक बार मीरा जी ने ब्रह्म भोज किया, आज तो महारानी है ना, खर्चा तो मिलता ही है, राजा महाराजा में यहाँ रानी का चौका अलग चलता है, राजा का अलग चलता है, ऐसा होता है। अब भी आजकल रिवाज है ऐसा, पहली कथा ही तो उसमें उन्होंने अपने गुरु भक्त रहराज को बुलाया। जब भोजन बन के तैयार हुआ तो ब्राह्मणों ने एक बात उठा दी और ये कहा, हम रहराज जी हमारे साथ संगति में बराबर बैठ नहीं खा सकते। रहराज जी ने कहा, ये ब्राह्मण देवता आप बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं जीते घटने वाला सवार आपके साथ कैसे खा सकता हूं? पर भक्तिमती मीरा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनका हृदय दुख गया और केवल उनके मुंह से ये बात निकली, अब तो देर भई, महाराज जी सब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, हरे ब्राह्मण की मालूम होता था कि रेदास जी मेरे पत्तल में खा रहे हैं, अब क्या करें, अब क्या करें? ये बात हमको कब सुनाई गई थी? जब एक साधक से पूछने गए थे कि भाई साहब किस मंत्र का जप करना चाहिए, तो उन्होंने ये कथा सुनाई कि भैया बताओ अब तो देर भाई कौन सा मंत्र है, हम क्या बताएं, हमको तो साफ शुरू से ही तो परामर्श ऐसे ही मिला, सलाह ऐसी मिली, तुम इस परमात्मा को अपना मानो, यही महामंत्र है, राम का चाहे ओम का चाहे अल्लाह को सहमत लो, कोई नाम लो सहमत लो, अरे जिसको अपना मान लेते उसका नाम लेना जरूरी होता है क्या? क्या रहा है जी? लेकिन उसका नाम बुरा लगता है क्या जी? अपने की हर चीज प्यारी भी लगती है और अपना अपने को प्यारा भी लगता है, तो भगवान का नाम प्यारा लगना अलग बात है लेकिन लेना जरूरी है क्या? आज हमको प्यारी लगती है दुनिया और नाम लेते हैं। फिर मीरा जी की बात कर समझ में आ जाए। उसके बाद सुनते हैं मीरा जी के मन में इतना गहरा विश्वास बैठ गया कि पुरुष तो केवल एक भगवान ही है और कोई पुरुष है ही नहीं, अन्य पुरुष ही नहीं है। ये उनको अनुभव हो गया, ये उनकी निष्ठा हो गई। और इस निष्ठा का पता कैसे चला? कि जब वो श्री वृंदावन आई, अमर जीव कृष्ण गोस्वामी से मिलने के लिए उन्हें खबर भेजी कि मैं दर्शन करना चाहती हूँ, आखिर बाहरी रूप तो रानी का ही है, राजमाता ही है, राजघरानी से ही आई है। तो उन्होंने खबर भेजी कि मैं स्त्री से मिलता नहीं हूं। तो मीरा जी ने वापस में खबर भेजी, निकालो निकालो कि वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया, पुरुष तो स्त्री कृष्ण है, दूसरा पुरुष ही नहीं है, इसको निकालो यहां से। अब तो गोस्वामी जी घबराए और कहा, आइए आइए आइए, आपके लिए कोई ध्यान नहीं। ये मीरा जी की बात कितना ऊंचा, देखो परमात्मा के मानने का प्रभाव क्या होता है जीवन पर, फिर हमें किसी और के मानने की आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा के अस्तित्व को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे लिए किसी और की हस्ती नहीं रहेगी, किसी और का अस्तित्व नहीं रह गया, और परमात्मा की महिमा को स्वीकार हमने कर लिया तो हमारे लिए किसी और की महिमा नहीं रहेगी, और परमात्मा के संबंध को स्वीकार कर लिया हमारे लिए किसी और का संबंध नहीं रह गया। तो जीवन में न किसी और का अस्तित्व है, न किसी और का महत्व है, न किसी और का संबंध है। कि भागवत में आती है आपके तो मन कहाँ जाएगा बताओ? मन के लिए कोई जगह रहेगी क्या?
नहीं।
क्या
नहीं,
नहीं रहेगी। समझ नहीं बैठिया है? आप देखिए परमात्मा हम भगवान को मानते हैं। अरे भले आदमी भगवान को मानते हो फिर और किसी के मानने की तुम्हें जरूरत क्या हो गई? भगवान की महिमा स्वीकार करते हो फिर और किसी का आकर्षण तुम्हारे जीवन में कहां से आ गया? भगवान से संबंध जोड़ लिया फिर और कोई संबंध रह गया क्या? तो जो अन्य विश्वास नहीं रहा, अन्य संबंध नहीं रहा, अन्य अस्तित्व नहीं रहा, अन्य महत्व नहीं रहा, तो मन कहाँ जाएगा? सब लोग हट जाएगा। तो भगवान को मानने का फल होना चाहिए कि मन भगवान में लग जाए। लगाना नंबर है ये मीरा जी की दशा हो गई कि मीरा जी के मन में न किसी और का अस्तित्व है, न किसी और का महत्व है। यहां तक सुनते हैं कि एक कामी पुरुष गया, कोई कामी पुरुष समझते हो ना, और उसने मीरा जी से ये कहा जाकर कि भगवान श्री कृष्ण ने हमसे ये कहा है कि तुम मेरे साथ भोग विलास करो। सुन रहे हो? मेरे आओ आओ करो अब एकांत में चलो। मुझे जब भगवान ने कहा तो एकांत ही क्या होता है? थर कांपने लगा, चेहरा बिगड़ गया, उसका काम नाश हो गया। ये भक्त की महिमा बता रहा हूं, ये मीरा जी की महिमा है। इस तरह से मीरा जी का जीवन बीत रहा है। उसके बाद सुनते हैं उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, हाथ भेजा के लिए। तो गोस्वामी ने जवाब में पद वो पत्रों को याद नहीं है, अपनी दशा लिखी वहां की दशा। तो मीरा जी गोस्वामी पद 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 उत्तर मालूम है, जिनको प्रिय राम देवी यानी परमात्मा तजिए साय कोट बैरी सम यद्यपि परम सने ही सुन लेना, तजिए साय कोट बैरी सम यद्यपि परम सने ही जिनके प्रिय राम देवी। राम देवी माने अपनी निष्ठा उन्होंने लिखी, लेकिन लेकिन जिनको भगवान प्रिय नहीं है उनको छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसे बहुत से प्रमाण दे दिए, किसी ने मां को छोड़ा, किसी ने पति को छोड़ा, किसी ने किसी को छोड़ा, किसी ने किसी को छोड़ा। अगर अगर यहां तुम रहती हो वहां के लोगों को भगवान प्रिय नहीं है तो उनको छोड़ दो, ये उत्तर आया गोस्वामी जी का, ऐसा सुना जाता है। पद तो उनके इतने अधिक हैं कि अगर उन पदों के व्याख्या करते रहो तो सारा जीवन बीत जाए। तो महाराज शुरू चली गई द्वारका जी। अब उनकी साधना क्या है? एक तानपुरा है उनके पास, और अपने मन की बात को, अपने भावों को पद में व्यक्त करती है, वो भी भगवान की लीला ही समझो। अगर उन्होंने पद में व्यक्त नहीं किया होता तो उनका इतिहास भी लिखने वाला थोड़ी था। क्या है? भगवान को उनकी महिमा प्रकाशित करना था, उनके उनके भक्ति को प्रकट करना था, और भक्तों के लिए एक आदर्श सामने रखना था, एक प्रमाण रखना था। तो जब सुनते हैं कि मीरा जी वहां चली गई द्वारका जी, तो मेवाड़ में दुष्काल पड़ने लगा, जैसे आजकल पड़ रहा है राजस्थान में, अकाल पड़ने लगा, वर्षा नहीं हुई। तो पहले के राजा लोग जो होते थे वो जब राज्य में कोई आपत्ति आती तो पंडितों की सभा करते थे और उनसे पूछते थे कि क्या कारण है हमारे राज्य में इतनी आपत्ति आ रही है। तो उन्होंने पंडितों की सभा की और पूछा, पंडित तो ये कहा महाराणा साहब, आपने भक्तिमती मीरा जी का अनादर किया है, इसलिए आपके राज्य में दुष्काल आ रहा है। ये बंधन मीरा दे दिया। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप लोग जाओ, मेरी ओर से सविनय प्रार्थना करो कि राजमाता जी दो बार में पधारे। अब तो पति नहीं तो महारानी नहीं तो राजमाता हो गई। तो पंडित लोग गए वहां अरे द्वारका जी गए और उन्होंने जाकर कहा कि हे राजमाता जी, अरे बिहार में तो राजमाता ही कह जाती है, हे राजमाता जी आपको महाराणा ने याद किया है, आप शीघ्र दर्शन देने की कृपा करें। अब यहां मीरा जी की आंतरिक निष्ठा का पता चलता है। मीरा जी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, ये नहीं कहा। इसका मतलब क्या कि जितनी घटनाएं उनके जीवन में घटी उसमें उन्होंने किसी को अपराधी नहीं माना। बड़ी भारी बात है, किसी को अपराधी नहीं माना कि मेरे साथ ये बुराई की, ये बुराई की। लेकिन एक स्त्री जैसे अपने पति से बात करती है बहुत ही सहज भाव से, सुनते हैं कि मीरा जी का जो आखिरी पद है अब उनको याद है। हमको याद कैसे हो गया कि सन 1959 में जब मुझे हार्ट का अटैक हुआ था तो गोली पद एक लड़की गाती रही और मैं सुनते सुनते सो गया। तो ऐसी बुरी दशा थी, हार्ट की स्ट्रेन कुछ हो जाता है, कार्डियक अस्थमा डॉक्टर लोग जानते हैं, लेट तो सकता ही नहीं था, बैठा भी जाता नहीं था, ऊपर का श्वास हुआ पर पूरा श्वास भी नहीं आता था और पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, दर्द नहीं था कहीं, बस ये बात की बहुत कृपा थी, दर्द नहीं था। और रात के 10 बजे शुरू हुआ और जंगल में मैं ठहरा हुआ था, वहां हुआ और सुबह मुझे अहमदाबाद जाना था, मोटर खड़ी थी। साथ वाले ने कहा डॉक्टर बुलाया, मैंने कहा शरीर रहेगा तो सवेरे बुलाएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो पद सुनते सुनते मैं सो गया, मुझे याद हो गया वो पद। भक्तवाणी का बड़ा महत्व होता है, बड़ी महिमा होती है, मंत्र की तरह होती है भक्तवाणी। तो सुनते सुनते नींद आ गई, सुबह 4 बजे उठा और मुझे कोई तकलीफ नहीं वाली पड़ी, ट्रेन पर आ गया, स्टेशन आया। 30 नवंबर 1959 सोमवती का दिन था, अमावस्या का दिन था, तो मैंने कहा गंगा की धारा में नहीं जाओ, नल की धारा में नहाओ, सब जल गंगा रूप है, सब पत्थर शालिग्राम, सब बन तुलसीधर भया जब तीन आसमराम। इस ख्याल से मैंने नहा भी लिया, फिर वहां पर टहलता भी रहा। उन दिनों चाय पीता था, फिर सज्जन चाय पी गया, चाय भी पी लिया, ट्रेन भी आ गई, बैठ लिया अहमदाबाद पहुंचा। 21 सिंधी चढ़कर जिनका चेहरा था ऊपर पहुंच गया, जिनका आज हमें ऐसा शांत धनुहार हो गया था, उन्हें फैमिली डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर समझ में नहीं आया। खैर सवेरा हुआ, 3 दिन के व्याख्यान दिया और रात को फिर वहां से मैं बम्बई भी निकल दिया और बम्बई आ गया। तो 3 तारीख को मुंबई के प्रेमियों ने डॉक्टर शांतिलाल शाह को बुलाया, जिनको दोपहर को मैंने ऐसे हो गया था, क्या कारण है मैं तो उधर ही समझा उसको। तो डॉक्टर शांतिलाल ने ये कहा कि आपके हार्ट पर स्ट्रेन हो गया है, ठीक हो सकता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन साधु का इलाज तो साधु के संकल्प से होता नहीं है, दूसरों के संकल्प से होता है। किसी ने कहा बैठ का इलाज होना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर होना चाहिए। तो शाम को शिव शर्मा बैठ को बुलाया, 3 नवंबर को बुलाया कहा कि इमरजेंसी में एडमिट होना चाहिए। अरे वो बना के क्या एकदम हार्ट अटैक हो गया। अपने सीखे आदमी सरदार से मौजूद था,
रात
को बड़े जोर का अटैक हो गया, वैसे ही मिर्जापुर में था, ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे, बेहतरीन यूनियस भी दिया, कुछ नहीं हुआ, नींद आई नहीं, उस पद ने जो काम किया था वो दवा में काम नहीं किया। अब मैं कैसे सोया, क्या हुआ मालूम नहीं, तारीख चार को फिर अटैक हो गया। सरकार के सामने की बात है, सब लोग घबराए। उन्होंने कहा एलोपैथी इलाज होना चाहिए, इलाज किसका हो, डॉक्टर शांति लाल चालीस वर्ष प्रसिद्ध है, उन्हीं को चुना। मुझे बहन आई थी उनको, तो उन्होंने सोचना थी
Let the fire
तुम्हें तरसाए जो जो पते सुने हर कीर्तन आवत जात रहे तमनाते आवत जात रहे तमनाते सुमित साधु सा